के माध्यम से मात्र स्पर्श को जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान ना रस को जानेगा, ना सुगंध दुर्गंध को जानेगा, ना रंग को जानेगा और ना शब्द को जानेगा। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तमान ज्ञान मात्र स्पर्श को जानेगा, अन्य को नहीं। इसी तरह रसन इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तमान ज्ञान मात्र रस को जानेगा, अन्य को नहीं, है ना। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, अपने अपने विषयों को जानने वाले। तो ज्ञान को खंड खंड रूप से अभिव्यक्त करती, उसको बोला भावेंद्रिय, आगे इसमें परिभाषा आएगी सबकी। और तीसरा कि उन भावेंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थ जाने गए, और वो पदार्थ नियम से कौन होंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण यानी पुद्गल, और शब्द माने पुद्गल की पर, यानी सब हो गया। ये जो पौद्गलिक पदार्थ है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो चार तो गुणों की पर्याय जानने में आती है, स्पर्श रस गंध वर्ण। इसमें भी देखो ध्यान देना, ना तो पुद्गल परमाणु जानने में आता है इंद्रियों के माध्यम से, और ना पुद्गल के गुण जानने में आते। स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, ये तो मूल गुण है ना पुद्गल के, एक गुण जानने में नहीं आते। आता क्या है, पुद्गल परमाणुओं का स्कंद, और उस स्कंद में इन गुणों की जो व्यक्त पर्याय होती है, स्पर्श की रस की गंध की वर्ण की, यानी ये समझो कितना हमारा ज्ञान स्थूल है। पुद्गल परमाणु को नहीं जान सकता, पुद्गल परमाणु के गुणों को नहीं जानता, पुद्गल को भी स्कंद के माध्यम से जानता है। जब अनेक पुद्गल इकट्ठे हों और स्कंद बन जाए तब उनको जानता है, और अनंत 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 पुद्गल द्रव्यों की स्कंद की जो पर्याय होती है, एक पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श गुण की पर्याय होती, रस की पर्याय होती, गंध की पर्याय होती, वर्ण की पर्याय होती, होती कि नहीं होती। लेकिन ना तो परमाणु ज्ञान का इंद्रिय ज्ञान का विषय, अरे माने ना तो हमको सदमस्त को वो परमाणु जानने में आता, और ना उन परमाणु के गुण जानने में आते हैं। जब वो स्कंद रूप परमाणु कर जाए तो पुद्गल स्कंद के रूप में ये जानने में आते, और इसके गुणों का परिणमन, जैसे कि अभी जैसे मायक है, कि मायक का स्पर्श गुण का परिणमन क्या है, इस समय सर्दी के मौसम में मायक ठंडा ऐसे ऐसे लगा, वो जानने में आया। वो ज्ञान का स्वभाव, क्योंकि ज्ञान अखंड है और जानने में आने वाला ज्ञान भी अखंड है ना, और आत्मा के ज्ञान का व्यापार भी आत्मा के अखंड प्रदेशों से होता है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता। क्या बात कही, ज्ञान अखंड, ज्ञेय अखंड, और ज्ञान के परिणमन का क्षेत्र अखंड। आत्मा के असंख्या प्रदेशों में ज्ञान की पर्याय होती, असंख्या प्रदेशन होती ना, तो असंख्या क्षेत्र अखंड है, ज्ञान अखंड है और ज्ञेय अखंड है। इंद्रिय ज्ञान तीनों में खंड करता है, ज्ञेय में खंड करता है, मैंने पुद्गल परमाणु, तो पुद्गल परमाणु का स्पर्श इंद्रिय से पूछा तो पुद्गल परमाणु के भैया है, तो ये पुद्गल स्कंद, ये तो ठंडा है, ये तो गर्म है, ये तो कड़ा है, ये तो नरम है, मैंने उससे पूछो इसका स्वाद कैसा, वो नहीं बता पाए। ज्ञान का स्वभाव इस तरह ज्ञेय में खंड करना नहीं है, क्योंकि पुद्गल परमाणु में तो स्पर्श रस गंध वर्ण एक ही साथ है ना, और ज्ञान में भी उन्हें जानने की एकता सामर्थ्य है, और अखंड पूरे आत्म प्रदेशों से जानता है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान में खंड करता है, ज्ञेय में खंड करता है, और प्रदेशों से खंडित है, आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से इंद्रिय ज्ञान का व्यापार नहीं होता। आत्मा जैसा चक्षु इंद्रिय का व्यापार होगा, कहाँ होगा, आंख के आगे जो प्रदेश आएंगे, जैसा मौसम प्रकट मिलेंगे। तो ये तीनों शर्तों को इंद्रिय ज्ञान पूरा नहीं करता, भावेंद्रिय पूरा नहीं करता, इसलिए उसको भी उन्होंने ज्ञान में नहीं डाल करके ज्ञेय में डाला। इंद्रियां ज्ञेय, भावेंद्रिया, अब उन इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ में भी स्पर्श रस गंध वर्ण वो भी स्कंद दशा में और उसके ज्ञान का विषय बनते हैं। तो उन तीनों को उन्होंने इंद्रिय शब्द से कहा, इंद्रिय शब्द का आचार्य कुंज कुंज ने इंद्रिय शब्द कहा और अमृत चंद्र आचार्य ने इंद्रिय शब्द में से तीन अर्थ निकाले, द्रवेंद्री अवेंद्री और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ है ना। अब देखो इन तीनों से भिन्न करना है ना, इन तीनों को उन्होंने एक एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? बहिरंग में प्रकट अति स्थूल, वो तो लिया ही है, ये शरीर परिणाम को प्राप्त। बहिरंग में प्रकट अति स्थूल, जड़ स्वभावी, जड़ इंद्रियां, क्या शब्द का प्रयोग किया? जड़ इंद्रियों के लिए। बहिरंग में प्रकट अति स्थूल, जड़ स्वभावी, जड़ इंद्रियां आ गया। अच्छा, अब उधर खंड खंड भावेंद्री के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? अपने अपने विषय को जो खंड खंड रूप से बताती है, खंड खंड रूप, तो भावेंद्री के लिए शब्द का प्रयोग किया खंड खंड, ठीक। और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? वे संग रूप है, संग, और उनसे भिन्न भगवान आत्माओं को करना है। तो जब द्रव्य इंद्रिय की बात आई, द्रव्य इंद्रिय में क्या था? बहिरंग में प्रकट अति स्थूल, जड़ स्वभावी, जड़ इंद्रियां कैसी हैं? शरीर परिणाम को कहा, उनके सामने भगवान आत्मा कैसा? अंतरंग में प्रकट अति स्थूल, चैतन्य स्वभावी, निज भगवान, निज भगवान आत्मा कैसा है? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म, चैतन्य स्वभावी है। जड़ इंद्रियां कैसी है? बहिरंग में प्रकट अति स्थूल, जड़ स्वभावी। अब वो पंडित जी से पढ़ा देते हैं, ऐसे पढ़ा देते हैं, तो इधर रखो, इधर बहिरंग में, इधर बोलो रखो, अंतरंग में प्रकट अति स्थूल, प्रकट अति सूक्ष्म, जड़ स्वभावी, जड़ इंद्रियों से चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा को। और फिर साधन भिन्न करने का साधन है, क्या साधन? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न किया। तीन बातें, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता, मैंने उसमें भेदाभ्यास में, निर्मल भेदाभ्यास में आपको हमको प्रवीण होना पड़ेगा। प्रवीण का मतलब क्या? तो प्रवीण उसे कहते हैं कि एक अविभाजी प्रतिच्छेद जितना अंश भी आत्मा का पर में नहीं जाने दे, पर में मिलावे नहीं, और पर का एक अविभाजी प्रतिच्छेद जितना अंश भी आत्मा में नहीं मिला दे। इसका मतलब पंडित जी साहब की भाषा में कहे, टोटल जी साहब की भाषा में, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। तो अपना अंश पर में कौन नहीं मिलाएगा और पर का अंश अपने में कौन नहीं मिलाएगा? जिसे अपना पता होगा और जिसे पर का भी पता होगा। अपना पता होगा उसे ही पर का पता होगा, जिसको अपना पता नहीं उसको वास्तव में पर का भी पता नहीं। आप कभी क्या बात करते हो, पर का पता कैसे नहीं आपकी? अरे अपनी आत्मा का पता नहीं है सभी, लेकिन पर का पता तो है। तो भाई साहब, पर को निज रूप मानता है तो पर का पता है, क्या मानता है वो? पर को निज रूप मानता है, क्योंकि जो पर का, अरे पर का पता हो, कि पर का पता होने का मतलब क्या? यह पर है। अगर ऐसे पर का पता हो तो पर को निज रूप नहीं मानता। पर को निज रूप मानता है ना, तो पर को निज रूप मानने का मतलब क्या? इसको पर का पता नहीं। क्यों नहीं है? तो अपना पता नहीं। तो अपना पता हो तो अपने अलावा बाकी के सब पर है, ये बताने की जरूरत पड़ेगी। अब उनको छोड़ना, भेद ज्ञान करना, तो भेद ज्ञान कैसे करना? अब अपन ऐसा करें, एक एक पर से गए, तू मैं, तू मैं नहीं, तू मैं नहीं, तू मैं नहीं, तू मेरा नहीं, तू मैं नहीं, तू मेरा नहीं, अनंत काल बीत जाएगा पर ये वेद ज्ञान का प्रयोग नहीं है। क्योंकि अपन उदाहरण के रूप में विचार करें, अपने गांव में 5000 मकान हो, ठीक है, उसमें से अपना मकान कितना, एक जिसमें अपन रहते वो अपना एक मकान, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपने मकान में गए 4999 मकानों का अपने आप अपने से भिन्नता वेद ज्ञान हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब पहले तो कोई क्या नहीं भाई, नहीं तो पहले एक एक मकान का निषेध कर दो, ये मकान मेरा नहीं, ये मकान मैं 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 नहीं, शराब में निषेध करने निकलेगा तो सुबह हो जाएगा ना, तब तक यही हो। और ऐसी निष्ठा क्यों करना, जब इतने से काम चल रहा है तो जो तू है वहां चला, पद्धति सरल पद्धति विश्वस्त पद्धति क्या है, अपने में चला गया तो बाकी सब पर है और वो मैं नहीं हूं, उसका त्याग हो गया। उसका एक एक का नाम उसका विवरण आपको आता हो कि नहीं आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस निज शुद्धात्मा के अलावा अंतरंग में प्रकट अपनी सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं। जैन धर्म का वेद ज्ञान कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं, अपनी वस्तु अपनी नजर में आ गई अपने रूप से, अपनी वस्तु अपने रूप से अपनी नजर में आ गई तो जगत के सारी वस्तुओं में अपनेपन का अभिप्राय टूट गया, ये हो गया वेद ज्ञान, ठीक है। नजर में आनी चाहिए स्व सर्वता पूर्ण, वो यहाँ पे ये कहा इन्होंने, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ है ना वे संघ रूप है, हर इंद्रिय के सामने खंड खंड, उधर उसके सामने चैतन्य स्वभाव का विशेषण दिया अखंड। जिस भगवान आत्मा को निर्मल भेदा अभ्यास की प्रवीणता द्वारा आपने इसे सर्वथा न्यारा किया, और इधर इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों की जब चर्चा करें तो 5 इंद्रियों के भाव इंद्रियों के माध्यम से जानने में आने वाले, और देखो एक चीज और समझो तो बहुत से उपग्रह परमाणु हो सकता है अभी अपने को जानने में नहीं आ रहे, तो अपन लोग ये समझ सकते हैं तो भाई साहब जो जानने में आ रहे उन्हीं से भेद ज्ञान करना है ना, क्या जो तो जानने में आ रहे हैं इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ अपने को उन्हीं से भेद ज्ञान करना है ना, जो जानने में नहीं आ रहे हैं उन्हें तो हम अपना मान सकते हैं कि नहीं, बोलो जिंदगी से क्या कर सकते हैं, बोलो कि भाई जो तुझे जानने में नहीं आ रहे मैंने ऐसे पुद्गल परमाणु भी हो सकते हैं ना कि जो तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, लेकिन तेरे ज्ञान का विषय इंद्रिय ज्ञान का विषय बनने की हमें योगी बात, मैंने अगर वे जाने जाएंगे केवल ज्ञान में तो जाने जाते हैं वहां तो अतिद्रिय ज्ञान है उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन वे जाने जाएंगे तो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से वे ही जाने जाएंगे, इंद्रिय ज्ञान का वो विषय बनेंगे, चाहे अभी तेरे इंद्रिय ज्ञान का विषय बन रहे हो या नहीं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का वो विषय है, उनमें इंद्रिय ज्ञान का विषय होने की योग्यता है। तो जिस जिसमें भी इंद्रिय ज्ञान का विषय होने की योग्यता है आंख बंद करके कह दो वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है, बराबर समझ में आ गया। और वो क्या है तो वो संग है, संग रूप है वो, और इधर भगवान आत्मा कह लेना तो भगवान आत्मा असंग तत्व, इसको किसी का संग नहीं है, किसी का संग हुआ नहीं है, और अनंत काल में जिसे किसी का संग नहीं होगा, ऐसा जो असंग भगवान आत्मा है उस असंग भगवान आत्मा को संग रूप इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न किया। इसमें दो बातें को मनाई, कौन कौन सी दो बातें को मनाएगी, एक तो भिन्न करने का साधन क्या है, चाहे आपको द्रव्य इंद्रियों से भिन्नता करनी हो, भाव इंद्रियों से भिन्नता करनी हो, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भिन्नता करनी हो, मतलब भिन्नता के प्रकार अनेक हो सकते हैं, लेकिन भिन्नता करने का साधन एक है, और वो साधन क्या है? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता। एक बात तो ये, दूसरी बात कोई कहे भाई साहब द्रव्य इंद्री भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, अब ध्यान देना इसमें जरा, द्रव्य इंद्री शरीर के अवयव है, क्या है? द्रव्य इंद्रिया शरीर के अवयव, भाव इंद्रिया इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाला ज्ञान, लेकिन किसके माध्यम से प्रवर्तने वाला? इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाला ज्ञान, ठीक है, वो अपनी पर्याय है, एक समय की अपनी पर्याय का ही प्रवर्तन इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हम उसे ज्ञान नहीं ये कह रहे हैं, वो चर्चा आएगी विस्तार से, वो और तीसरा जो अपने इस शरीर से भी बाह्य के भी पदार्थ है, शरीर बाह्य है, इंद्रियों में बाह्य पदार्थों में भी आ जाता है, इंद्रियों द्रव्य इंद्रियों में भी आ जाएगा, तो इंद्रियों के बाह्य इंद्रियों से बाह्य पदार्थ है, बात समझ आई? वे अत्यंत भिन्न पर पदार्थ, संयोग रूप शरीर और परिणमन रूप इंद्रिय ज्ञान का व्यापार, ऐसे देखा जाए इन तीनों में कितना अंतर, शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावदास संबंध है, इंद्रिय ज्ञान एक समय की पर्याय में परिणमन है, और वे अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है, ठीक है, आया अंतर सुनने, है ना? ऐसा होने पर भी आचार्य देव कहते हैं कि तुम जब चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा, अखंड निज भगवान आत्मा, असंग निज भगवान आत्मा की दृष्टि से देखोगे, तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है भाई, और इसीलिए इनमें भेद निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा अपने से भिन्न करने की बात कही, तो तीनों में आचार्य देव ने सर्वथा भिन्न शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? सर्वथा भिन्न है, क्या मतलब? इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जैसे असंग आत्मा से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि वो संग रूप है, इसी तरह जिस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से वे पदार्थ जानने में आते हैं, वह इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा से सर्वथा भिन्न है। क्यों सर्वथा भिन्न? क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि नहीं हो, उसे ज्ञान कहलाने का कोई अधिकार नहीं, बेटा अपना भी हो और कुल को कलंक लगाता हो तो पिता बोल देता है कि ये मेरा बेटा ही नहीं, समझ आएंगे? नहीं बोल देगा, नहीं बोलेगा ये मेरा बेटा ही नहीं, और सर्वथा नहीं ऐसा बोल देगा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जो अगर ज्ञान है वो, तो जिसका ज्ञान है उसे प्रसिद्ध नहीं करे, उसको ज्ञान कौन कहेगा? झटपट आदि जानता तेती तेने मान, जान नार ने जाने नहीं, तो ये क्यों ज्ञान? झटपट आदि को जानते हुए, झटपट आदि जानता तेती तेने मान, झटपट आदि को जानते हुए ज्ञान से तू उनका अस्तित्व तो स्वीकार करता है, लेकिन जानने वाले को नहीं जानता, जिसके अस्तित्व में ये समय में आ रहे हैं, ज्ञान का अस्तित्व ना हो, अभी आया था प्रवचन में, ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो राग को जाना किसने, ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो कर्म को जाना किसने, ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो शरीर को जाना किसने, ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो पर को जाना किसने, स्व की बात तो छोड़ो पर को भी जाना किसने, पर का जानना भी ज्ञान के अस्तित्व को सूचित करता है। और कहते ज्ञान के अस्तित्व में पर के अस्तित्व की तो तू स्वीकृति करता है, लेकिन वह ज्ञान जिस जाननहार स्वभाव का है, जिस जाननहार स्वभाव को वो प्रसिद्ध कर रहा है, अज्ञान, अगर तू उस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता तो आचार्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् जी कहते हैं, सभी ज्ञानी कहते हैं, कहिए क्यों ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञान हो गए जिस ज्ञान में ज्ञान की गाय की प्रसिद्धि नहीं हो गई। जो ज्ञान गाय को प्रसिद्ध नहीं करे हम उसे ज्ञान नहीं कहते। जो ज्ञान एकांत कल को प्रसिद्ध करता है, इंद्रिय ज्ञान कैसा है, इंद्रिय ज्ञान एकांत स्तर पर को प्रसिद्ध करता है, तो जो एकांत स्तर पर को प्रसिद्ध करता है, जिसको वो प्रसिद्ध करता है वो उसी का हमारा नहीं। ऐसा कहकर भावेंद्रियों से भी सर्वथा निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा भावेंद्रियों को अपने से सर्वथा भिन्न किया। जब भैया भावेंद्रियों को भी अगर आचार्य भगवान कह रहे हैं तो भावेंद्रियों को भी सर्वथा भिन्न करेंगे, अभी इंद्रियों के विषय भूत पदार्थों की कोई बात बची, अपनी क्या स्थिति, आत्मा के अलावा सब अपना दिखता है, समझ आएगा नहीं, आत्मा के अलावा सब अपना दिखता है, आत्मा ही अपना नहीं दिखता, भटकने के साथ से पूरे से वो यहाँ पे आचार्य भगवान ने देखो कितना बढ़िया ये पहले उसका मैंने उन्होंने कोष्ठक में ये सारा खुलासा किया, उसके बाद फिर गाथा पे आए, फिर से देखो जो द्रवेंद्रियों भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय भूत पदार्थों को, फिर उसमें खुलासा किया तीनों को, किन तीनों को, द्रवेंद्रियों को भावेंद्रियों को और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों को, जानना क्या इन तीनों को अपने से अलग करके निकाल दिया, कान को काट के उधर रख दे, क्या करे, अलग करने की पद्धति क्या है, ना तो तू इनको हटा सकता, इंद्रियां शरीर इंद्रियां जो जहां है वो वहीं रहेगी, इंद्रिय जो जहां है किसी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, और एक ऐसा परिवर्तन होगा वो क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, उस परिवर्तन का नाम है अपने से अलग करके अर्थात अपने को उनसे भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करें। जब अपनी आत्मा का अनुभव किया इन सबसे मैं भिन्न हूं, इन सबसे मैं अस्तित्व में भाव इंद्रिया नहीं, मेरे अस्तित्व में इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ नहीं, और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों में मेरा अस्तित्व नहीं, इंद्रिय ज्ञान में मेरा अस्तित्व नहीं, और जड़ इंद्रियों में मेरा अस्तित्व नहीं, ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य अस्तित्व को, चैतन्य स्वभावी अस्तित्व को, अखंड अस्तित्व को, असंग अस्तित्व को जब जीव ने अनुभव में लिया तो द्रव्य इंद्रिय में अपनापन खत्म हो गया, भावेंद्रिय में अपनापन खत्म हो गया, और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों में अपनापन खत्म हो गया और अपनी आत्मा में अपनापन आया, इसका नाम है अपने से अलग करके। अपने से अलग करने का मतलब कोई अलग अलग निकाल के रखना नहीं, अपने को अलग, अपने को अपने को अलग करेंगे, क्या कहा, अपने से उनको अलग किया, अपने से उनको अलग किया, क्या मतलब, अभी तक हम अपने से उनको एक रेख मानते थे, वे तो अलग हैं, हमने एकता की थी, देखो इंद्रियों ने अपने से एकता नहीं की थी, भावेंद्रियों ने अपने से एकता नहीं की थी, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में हमने एकता नहीं की थी, इसलिए उनको अलग नहीं करना है। हमने एकता की है, ये अपने से उनको अलग करना, उनने थोड़ी एकता की। हम बोलते हैं ना, तन धन को साथी समझा था पर देवी छोड़ चले जा, ये रोता है। अन्य तो भावना आती है शायद, अन्य तो भावना आता है, अरे साहब हमने तो तन को, हमने तो धन को, हमने तो इसको, हमने तो उसको, हमने तो साथी समझा, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। ये बोलते क्यों बोलते, और उसके पहले बोलते तन धन को मेरे तन धन को साथी समझा था पर देवी छोड़ चलेगी। मुझे साथी तूने समझा था, उन्होंने तो नहीं समझा था तुझे, उन्होंने तुझे साथी नहीं समझा था, और वे साथी थे ही नहीं वास्तव में। अब तूने साथी समझा और वे अपने कार्यकाल में छोड़ करके चले जाए, इसमें कौन सा अच्छे है? तूने माना था तू अपने को अलग कर, अपने से अलग कर लिया, उनने तो माना नहीं, इसलिए उनको अलग करने, वे तुझे अलग करें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? यदि उनने तुझे अपने साथ एक नहीं माने, तूने एक नहीं माना, तो जिसने माना सीधी सी बात है, जिसने धोया वही नीचे उड़ेगा। लोग नहीं बोलते, जिसने धोया वही निचोड़े। अपन ने माना तो भिन्नता किसको करनी पड़ेगी? भिन्नता अपने से अलग ही करके। अब अलग करने का मतलब समझ आ गया होगा, अलग करने का मतलब अलग माने अलग तो थे ही, अलग करके माने अलग को अलग जान लिया, इसका नाम है अलग करके। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न में क्या आया? सब आगे द्रवेंद्री भावेंद्रीय और इंद्रियों के विषय पदार्थ है ना, वो पांच इंद्रियों के विषय तो रूपी पदार्थ ही बनते हैं, लेकिन मन को भी एक अपेक्षा से नौ इंद्री कहा गया। कहा गया कि नहीं क्या? पांच मन, पांच इंद्रियां और छठवां मन। तो भाई साहब रूपी पदार्थ जो है ना विश्व के, वे रूपी पदार्थ भी विश्व मन का विषय बनते हैं। आगे यानी ये कहने का मतलब क्या? अपनी आत्मा के अलावा सारे विश्व से तू ध्यान कर ले। आत्मा का अभिन्न अभिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है। त्रिवेंद्री भावेंद्री इंद्रिय के विषय कुछ पदार्थ में सब आ गया, अपनी आत्मा का अनुभव करता है वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। मुनि जितेंद्रिय है, ये मुनि जितेंद्रिय है तो श्रावक समय जैसे जितेंद्रिय नहीं है ना। देखो ये जो स्तुति है ना, इन स्तुति के तीन प्रकार है, समझ लेना बात सुझा। स्तुति के तीन प्रकार, तो ये पहले ज्ञान ज्ञाय ज्ञाय शंकर दोष के परिहार वाली स्तुति थी या है, ये स्तुति जगन्य स्तुति कहलाती है। समझा गया? जगन्य स्तुति का मतलब ये स्तुति चौथे गुण स्थान से शुरू होती है और छठवे गुण स्थान पर रहती है, ठीक। उसके बाद जो 32 नंबर की गाथा में स्तुति आएगी थी, भावे भाव शंकर दोष को दूर करने वाली स्थिति, वो कहलाती है मध्यम स्थिति, और वो होती है सातवें गुण स्थान से लेके ग्यारहवें गुण स्थान। क्या होता है? सातवें से ग्यारहवें उत्सम श्रेणी। इसकी अनिवार्यता नहीं है कि ये स्तुति आवे आवे। और तीसरी स्तुति वो होती है उत्कृष्ट स्तुति, जगन्य मध्यम और उत्तम, यानी उत्कृष्ट स्तुति। वो कौन सी होती है? वो सातवें गुण स्थान से शुरू और बारहवें गुण स्थान में उसकी पूर्ण। फिर क्या होता है? तेरहवां चौदहवां गुण स्थान इस निश्चय स्तुति का फल प्रकट होता है। क्या फल प्रकट होता है? जिस परमात्मा की निश्चय स्तुति आपने की ना, तो वो परमात्मा दत्ता अपनी पर्याय में प्रकट होता है।
है ना। इसलिए यहाँ पर ये लिखा कि ये यहाँ पर लिखा ना कि आत्मा का अनुभव करता है वह मुनि, हाँ वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। ये मुनि छठे गुणस्थान वाले, छठे गुणस्थान वाले। तो मुनि लिया, तो मुनि लिया का मतलब क्या है? देखो अपन रिजल्ट सुनाते हैं ना, उत्तम मध्यम जगन्य, एक का सुना दिया, बाकी क्या बोलते हैं? शेष कार्यालय में आकर के पता कर लो, क्यों उसमें भी समय नहीं। तो शेष कार्यालय में आके पता करने का मतलब क्या हुआ? तो मुनि उत्तम अंतरात्मा है और समय दृष्टि और समय दृष्टि और श्रावक, तो ये भी जगत की स्थिति में वर्तते हैं। ये भी अंतरात्मा है, तीनों तीनों अंतरात्मा है, लेकिन स्तुति तीनों की जगन्य है, मध्यम स्तुति तो उत्तम श्रेणी की अपेक्षा बोली है और उत्कृष्ट स्तुति चपक श्रेणी की अपेक्षा से 33 समझ की ऐसा बनी। ये सारे बिंदु थे आ गया। अब इसके बाद एक एक इंद्री की व्याख्या वो करते हैं, एक एक इंद्री का स्वरूप क्या। अब यहाँ से दाता की टीका प्रारंभ होती है। एक्चुअली यहाँ पर उस दाता की स्पष्टता के रूप में कोष्टक भरा गया। कोष्टक का इतिहास मैंने आपको बता दिया था, इससे जो जो भी कोष्टक भरे गए तो क्यों भरे गए, टीका में मान लीजिए किसी बात को अपने को स्पष्ट करना है और वो बात टीका में नहीं है, अपनी ओर से स्पष्ट करना है, तो उसके लिए इन कोष्टकों का प्रयोग किया है। और ये गुरुदेव श्री की अनुमति और सहमति पूर्वक है, उनसे पास करा के किया गया है, इसलिए इस बारे में कुछ भी संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता आगे। अब उसके बाद यहाँ पे आती मैं पढ़ लेता हूँ, अभी एक पढ़ता हूँ फिर चर्चा बाद में कर लेंगे। अनादि अमर्याद रूप से बंद पर्याय के वक्त जिसमें समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया है, अस्त हो गया है माने हमें दिखाई नहीं देता, जैसे इंडिया में सूर्य अस्त हो गया है तो कोई बात नहीं अमेरिका में डूब रहा है, क्या मतलब अस्त हो गया है माने मिट नहीं गया, अस्त हो गया माने भारत के लोगों को अभी सूर्य नहीं दिखाई देगा, अमेरिका के लोगों को दिखाई देगा, अज्ञानी को दिखाई नहीं देता, ज्ञानी को दिखाई देता, ये इसका आगे वो चर्चा करेंगे विस्तार से। दिखाई नहीं देता अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक नेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, यही कह रहे भेद नहीं होता, भेद दिखाई नहीं देता ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को, तो क्या करना निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से भिन्न किया, सर्वथा अपने से अलग किया, समझ आ गया। ये द्रव्य सो यह द्रव्य इंद्रियों का साधन बताया, स्वभाव बताया, ठीक है, उस स्वभाव से विपरीत द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय के प्रकरण ना। अब जीतने का साधन निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता, ये बहुत ये शब्द बहुत आएगा, जो तीनों तीनों में आएगा ये शब्द, उसके द्वारा अपने से अलग किया, उसका नाम है द्रव्य इंद्रिय को जीत, क्योंकि इंद्रियों को जीतने के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें की जाती है, कही जाती है, समझाई जाती है, और जगत के क्रियाकांड पसंद लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से कुछ होता है, ये है वो, ये अनेक प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन उसमें रंच मात्र सच्चाई नहीं है। भेद ज्ञान करना निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा अपने भगवान आत्मा को सबसे भिन्न जानना अपने आत्मा के कल्याण का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये विस्तार से इसकी चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है, गुरुदेव खुद बोलेंगे
द्रव्य इंद्रिय का जो विषय पूरा होगा ना हृदय के प्रवचन में आएगा, आग इंद्रिय का विषय सबसे अधिक सूक्ष्म तो सूक्ष्म है, यहाँ ज्ञान का सूक्ष्म है। और उस ज्ञान का सूक्ष्म जो इंद्रियों के द्वारा बह रहा है, सारा जगत का अज्ञानी जीव उसे ज्ञान मान। भाई एक बात कहते थे, कहते मोह राजा ने इंद्रिय ज्ञान का नाम ज्ञान रखा है। आगे समझना, और वो इसी संबंध में इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान वो बात आई ना, 373 से 382 गाथा में इसी टाइप का विषय उठाया। शब्द है ना, एक शब्द अन्य है और मैं अन्य हूँ। क्यों? क्योंकि शब्द मुझसे ये नहीं कहता कि तू मुझे सुन ले आ, मैं भी अपने स्वभाव को छोड़ करके शब्दों में सुन ले जाता नहीं। इसलिए कारण गोचर शब्द और मैं अलग अलग, ऐसा भी बहुत सारा यह है, बहुत बाहर में सारी गाथाएं है, समझने योग्य है और अंतर में परिणाम लेने वाले हैं। वो समझ करके समा जाने का मार्ग है, समझाएंगे। लेकिन इतनी उछल कूद जगत में मची है, अपन ने थोड़ा सा भी अपना उपयोग बाहर देने की कोशिश की कि जगत के अज्ञानी जी अपने वो ऐसा उलझाने का प्रयास करेंगे, हम कभी भी अंतर्मुख न हो सके। अपने को ये तत्वाभ्यास करके सच में अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए, उसी भावना के साथ अपने को जिनवाने का अध्ययन करना चाहिए। इस चर्चा हम
मैं आत्म स्वरूप जानंदी शुद्ध स्वरूप।